हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 27, 28, 29, 30। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु अर्गारंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमिदं तत्रादरः न परः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वेऽपि बस्वा मृतुमेतदेव गोविन्द दामो धर्माधवेति। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारणम्। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। आठवां स्कंद दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है गजेंद्र का संकट, श्लोक संख्या 27, 28, 29 एंड 30। तो हमने देखा कि गजेंद्र इतने विशाल पशु हैं के वन के समस्त बड़े बड़े विशाल पशु उनकी केवल सुगंध मात्र से डरकर भागने लगते हैं। खाली उन्हें खबर पड़ जाती है कि यहाँ पर गजेंद्र आने वाला है, वो पूरे एरिए से सारे बड़े बड़े हिंसक पशु, शेर, भालू, चीते, घड़ियाल सब भागने लगते हैं। और लेकिन फिर भी उस गजेंद्र के अंदर एक बहुत ही सद्गुण है कि वो छोटे छोटे पशुओं को कुछ नहीं करता। छोटे छोटे पक्षु जो जैसे खरगोश और वानर, हिरन, उन सब पर अनुग्रह करता है। ये कोई साधारण हाथी नहीं है। अब ये सीक्रेट तो बाद में खुलेगा कि वो कौन है, सुखदेव जी बताएंगे, लेकिन अभी हम गजेंद्र के विषय में पढ़ रहे हैं कि वो जिधर भी जाता था ऐसा लगता था जैसे तूफान आ गया है। धरती और आकाश कंपन करने लगते थे। त्रिकूट पर्वत पर के वहां पर जब वो चलता था तो पूरा पर्वत हिलने लगता था। पूरे पर्वत में ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़ा कोई भूकंप आ रहा है जब भी वो जाता था। और अकेले नहीं जाता था, हमेशा उसके साथ हजारों पत्नियां, बच्चे और बहुत सारे दूसरे हाथी, क्योंकि वो जाहिर सी बात है लीडर था, तो अकेले नहीं जाता था, बहुत सारे झुंड के साथ जाता था। एक बारी उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगी, गर्मी का मौसम था और जो सूर्य की तपिश थी वो पहाड़ की चट्टानों से टकरा कर बहुत तेज गर्मी उत्पन्न कर रही थी, जिसके कारण वो सब हाथी बहुत सारा व्याकुल हो गए। और उसको, गजेंद्र को बहुत प्यास भी लगी और वो पानी की तलाश में ढूंढ रहा था कि कहीं, इतनी तेज गर्मी हो रही थी, पसीने से सराबोर हो रहा था, उसके गालों से बहुत ही सुगंधित मधु निकल रहा था जिस पर भौंरे भिनभिना रहे थे। वो बहुत मस्त अपने नशे में चूर, अपने यौवन के, अपनी शक्ति के वो घूम रहा था। अचानक उसे सुगंध आई, कमल की सुगंध आने लगी और उस सुगंध को सूंघते सूंघते वो, क्योंकि जानता था कि कमल सरोवर में होते हैं और वो सरोवर की तलाश करने कर रहा था, तो वो उसी सरोवर में पहुंचा जिसके विषय में हमने पढ़ा कि कितना सुंदर उसके अंदर निर्मल जल था और बहुत ही सुंदर कमल खिले हुए थे। तो उसके अंदर जाते ही उसके अंदर घुस गया, अपनी पत्नी और बच्चों को बोला तुम लोग ठहरो यहाँ पर, और कोई नहीं गया, केवल गजेंद्र अंदर गया और बहुत ही सुंदर रीति से उसने पानी पिया और बहुत समय तक स्नान किया। उसके अंदर पूरी थकान और गर्मी को खत्म किया, एकदम संतुष्ट हो गया। फिर अपने बच्चों और बीवी को बोला चलो ठीक है आप आ जाओ, अब मैं आप सबको पानी पिलाऊंगा। सबको एक एक करके पानी पिलाने लगा और सीख कर सब पुष्करेणो धृत सीकराम, वो कह रहे थे, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सीकर बना के। सीकर का क्या मतलब होता है, जैसे हम पानी में एक लकड़ी डालें तो उसको बाहर निकालें और उसको छिड़केंगे तो कितनी सारी बूंदें निकलेंगी ना, बहुत सारी बूंदें निकलेंगी, हालांकि उस लकड़ी पर तो एक ही बूंद होगी लेकिन उसको छिड़कने से बहुत सारी बूंदें शावर की तरह। उसी तरह जब हाथी की सूंड में पानी जाता है तो वो भी ऐसे सीकर की तरह, फुवार, शावर की तरह सबको निला रहा है, अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को, उनको पानी पिला रहा है। बहुत ही आसक्त है यहाँ पर। सुखदेव गोस्वामी ने अत्यंत ही सुंदर शब्द कहा है, यथा गृही, जिस प्रकार एक घर में आसक्त व्यक्ति घर में जिस प्रकार आसक्त होता है और फिर वो क्या करता है, गृही करेणों कर भाष्य दुर्मद, बहुत ज्यादा आसक्त होता है। वैसे गृही का एक मतलब होता है गृहस्थ और दूसरा गृह का मतलब होता है पकड़ने वाला। वास्तव में ये जो घर होता है या घरवाली होती है वो एक व्यक्ति को पकड़ के रखती है। जीव चाहे कहीं पर भी मनुष्य चला जाए वो अवश्य घर को याद करता है कि मुझे घर में जाना है। किसी अच्छे से अच्छी जगह पर हम जाते हैं लेकिन फिर कुछ समय के बाद घर की याद, क्योंकि घर जो है वो पकड़ के रखता है जीव को। तो यहाँ पर और उसके अंदर इतनी ज्यादा आसक्ति हो जाती है। वास्तव में यहाँ पर हमें एक बात समझनी चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी हम सबको शिक्षा दे रहे हैं यहाँ इस प्रसंग के द्वारा, क्योंकि यही शास्त्र कभी नहीं कहता कि विवाह करना गलत है, संतान उत्पन्न करना गलत है, कभी भी नहीं शास्त्र में लिखा हुआ है। परंतु ये संबंध गलत नहीं है, संबंध के कारण हाथी नहीं फंसा है, संबंध तो सदियों के साथ है उसका, लेकिन ये संबंध के अंदर जितनी आसक्ति होती है ना, वो बंधन का कारण होती है। वास्तव में ये संबंध तो हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिले हैं और अपने नियत कर्म पूरे करके कर्तव्यों को पालन करना है, परंतु इन संबंधों के अंदर जो आसक्ति है ना, वो हमारे बंधन का कारण बनेगी। और अब हम पढ़ रहे हैं, अभी देखेंगे कि जो गजेंद्र जो पूरे त्रिकूट पर्वत को, जो कि कितने कितना ऊंचा और फैला हुआ था, 80,000 योजन ऊंचा और फैला हुआ था, उसको जो पूरा गजेंद्र पूरे पहाड़ को जब वो खाली चलता था तो कंपायमान कर देता था, उस ऐसे महाबलशाली गजेंद्र को की हालत जब वो अपने परिवार में आसक्त हो जाता है तो उसकी हालत अभी हम देखते हैं। गजेंद्र जब अपनी पत्नी और बच्चों के ऊपर पानी डाल रहा था, घूम घूम के चक्रवात की तरह बहुत ही सुंदर रीति से उनको शावर से स्नान करा रहा था, तो सरोवर का जल जो है वो आंदोलित होने लगा और उस सरोवर में पानी खोलने लगा, तो उस सरोवर के अंदर एक बहुत ही महाबलवान, एक विकराल विशाल मगरमच्छ रहता था। तो उसने देखा कि आज सरोवर का पानी इतना ज्यादा खोल क्यों रहा है, तो हाथी तो बहुत ज्यादा मदमस्त था अपने बच्चों और बीवी को स्नान कराने में, लेकिन वहां पर क्या हुआ, अचानक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्लोक नंबर 27 में, तम तत्र कश्चिन नृपदैव चोदितो ग्राहो बलियांश चरणे रुषाग्रहीत यदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोति बलो विचक्रमे तं तत्र कश्चिन् नृपदैव चोदितो ग्राहो बलियांश चरणे रुषाग्रहीत यदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोति बलो विचक्रमे। वे कहते हैं तम तत्र कश्चिन, मतलब वहां पर कोई एक नृप दैव जो चोदितम, उस सरोवर में उस जगह पर जहां पर वो कर रहा था, तो वहां पर कश्चन एक कोई एक ग्रह, अब वो ग्रह कौन था वो तो आगे बताएंगे, अभी तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे दैव चोदितम। दैव चोदितो का मतलब होता है भगवान के द्वारा प्रेरित होकर, यानी ये भगवान की इच्छा के कारण हो रहा है। वास्तव में दैव जो है वो कर्मों कर्म को भी बोलते हैं, तो एक प्रकार से तो ये उसके कर्मों का फल है, कर्मों का फल कैसे है वो भी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ये भी समझना चाहिए कि जीव के कर्मों का फल भी भगवान के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। तो ये भगवान की इच्छा है कि उसने जो शुभ कर्म किए हैं उनका भी उसे फल मिले और जो उसने अपराध किए हैं उसका दंड भी मिले। तो भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से, तम तत्र कश्चिन नृपदैव चोदितो, भगवान के इसके द्वारा प्रेरित होकर ग्राहो बलियांश शरणे रुषाग्रहीत। ग्राहो बलियांश एक बहुत ही महाबलवान, बहुत ही विकराल विशाल ग्राह रहता था, ग्राह मतलब क्रोकोडाइल, बहुत बड़ा मगरमच्छ वहां पर रहता था, जिसके अंदर, जिस पानी के अंदर वो अभी क्रीड़ा कर रहा था ना, उसके अंदर एक बहुत ही विकराल मगरमच्छ रहता था। और उसने क्या किया, चरणे रुषाग्रहीत, बहुत ही गुस्से में आ गया, उसको लगा आखिर ये हाथी अपने आप को समझता क्या है, इतनी देर से हम सब जल के प्राणियों को उसने परेशान करके रखा है, हमने पढ़ा था जल के अंदर बहुत सारे प्राणी थे, और अब इतना बड़ा हाथी 2-3-4 घंटे से उस सरोवर में ये यूं सब कर रहा था, अपने पत्नी अपने बच्चों को सब पानी वानी भर भर के डाल रहा था, तो सारे पशु पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और फिर उस महाबलशाली ग्राह ने क्या किया,
रुषा ग्रहित, रुषा मतलब बहुत पहली देर तो थोड़ी देर तो सोचा कि शायद अभी समझ जाएगा, शायद अभी समझ जाए, नहीं गया तो फिर उसे बहुत क्रोध आने लगा। रुषा मतलब उसे बहुत ज्यादा क्रोध आने लगा और ग्रहित उसको पकड़ लिया। मदमस्त हाथी जो कि अपने संतान और अपने पत्नी के प्रेम में आसक्त था और जीवन में केवल इंजॉय करना चाहता था, उसने उसको एक बहुत ही विकराल मगरमच्छ ने यहाँ पर जोर से अपने दांतों से क्रोध से पकड़ लिया। और हम जानते हैं क्रोकोडाइल के दांत कितने ज्यादा लंबे लंबे होते हैं, तो केवल पकड़ा नहीं बल्कि अपने दांतों से उसकी टांग को, उसके पैर को पूरा फंसा दिया। तो यहां से हमें ये समझना चाहिए, वास्तव में ये हमारी कहानी है। हम भी अपने परिवार की आसक्ति में आकर, और कैसे आते हैं, जैसे बताया, जैसे ये हाथी आया, नाजष्ट कृचम कृपणो जमायाया अजमायाया। भगवान अजन्मा की माया को नहीं समझ सकते। भगवान ने कह दिया दैवी ये शागुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया को समझना बहुत कठिन है, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेरी शरण में आना पड़ेगा। और हम भी भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, और जिसके कारण भगवान की माया के द्वारा बारम्बार जन्म मृत्यु के चक्कर में काल का ग्रास बनते रहते हैं। और ये वास्तव में गजेंद्र ही है, हम भी अपने परिवार की आसक्ति में पड़कर भगवान की माया को नहीं समझ रहे हैं, और काल रूपी मगरमच्छ ने हमें भी पकड़ा हुआ है, हम उसको भी नहीं समझते। प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल वो हमको मार रहा है, और हम अपने इस मृत्यु को आता हुआ देखकर भी उसे सावधान नहीं हो रहे हैं। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस स्थिति से गजेंद्र बचते हैं, और हमें भी उसी स्थिति को उसी ही तरह अपनी इस समस्या का समाधान करना चाहिए जिस प्रकार से गजेंद्र करेंगे। तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि वो क्या करते हैं। यहाँ पर बताया ग्राहो बलिया शरणे रुषा गृही, बहुत ही क्रोध से उस मगर ने, ग्राह ने बहुत ही क्रोध से उसका चरण पकड़ लिया। यदृच्छय एवं व्यसनम गतो गजो, तो भाग्य से यदृच्छय, बहुत इसका अपना दुर्भाग्य था कि वो इस बहुत ही संकटमयी स्थिति में पहुंच गया था, बहुत खतरनाक स्थिति। पहले तो गजेंद्र ने सोचा मैं एक झटका दूंगा और ये जो ग्राह है वो एक सेकंड में उसके मुख से अपने पैर को निकाल दूंगा। परंतु यहाँ सुखदेव कैसे कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी, यथा बलम सोति बलो विचक्रमे, बहुत बलवान था, कोई साधारण हाथी नहीं था, परंतु यथा बलम उसने अपनी शक्ति के अनुसार विचक्र में बहुत बहुत प्रयास किया बाहर निकलने का, बहुत बहुत प्रयत्न किया, परंतु ग्राह ने उसकी टांग को इतना मजबूती से पकड़ा था कि वो निकल न सका। जिस प्रकार हमें काल कितना मजबूती से पकड़ लेता है और हम उस काल के ग्राह से नहीं निकलते और अंतिम समय आ जाता है, हम अपनी मुक्ति का कोई रास्ता नहीं ढूंढते, ना ही उस रास्ते पर चलते हैं। अनुवाद, हे राजन, वेदादा की लेख से एक बलिष्ठ घड़ियाल ने जो हाथी पर क्रुद्ध था, जल के भीतर से ही हाथी के पैर पर आक्रमण कर दिया। हाथी निश्चित ही बलवान था और उसने भाग्य द्वारा प्रेषित इस संकट से अपने को छुड़ाने का भरपूर प्रयत्न किया। अब हाथी ने अपनी ओर से प्रयत्न किया परंतु गजेंद्र की शक्ति काम नहीं आई, तो क्या हुआ, आगे कहते सुखदेव गोस्वामी, तथा तुरम यूथपतिम करेणवो विक्रेश्यमाणम तरसा बलीयसा विचुक त्रिशूर्दीन धियो परे गजा पार्श्वी ग्रहास्तारयी तुम न चाशकन तथा तुरम यूथपतिम करेणवो विक्रेश्यमाणम तरसा बलीयसा विचुक
कृशुर्दीन दियो परिगजा पार्श्वी ग्रहस्ता नई तुम न चाशकन तथा तुरम यूथ पतिम करेणवा। उस विपत्ति में जब देखा, जब सबने आतुर देखा कि ये तो बहुत ही विकट परिस्थिति में आ गया, क्योंकि हाथी बहुत चिकार रहा था, बहुत शोर कर रहा था, हाथी को बहुत पीड़ा हो रही थी, गजेंद्र उस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सक रहा था और वो बहुत तेज से चिंगाड़ने लगा। जैसे वो चिंगाड़ने लगा तो उसकी पत्नियां, उसके बच्चे, दूसरे सारे हाथी वो समझ गए कि बहुत ही विकट परिस्थिति है। तो फिर तथा तुरम इस विकट स्थिति में किसकी विकट स्थिति आ गई थी? यूथ पतिम, वो अपने आप को पति समझ रहा था, वो अपने आप को रक्षक समझ रहा था, परंतु आज वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है और वो अपनी पूरी शक्ति लगा चुका है परंतु उसकी शक्ति काम नहीं कर पाई। उसी तरह आज हम भी अपने आप को न जाने क्या समझते हैं, थोड़ा सा बल, थोड़ा सा धन, थोड़ा सा ऐश्वर्य यदि प्राप्त हो जाता है तो संसार में अपने से बड़ा किसी को समझते नहीं है, समझते हैं हम ही सबसे महान है। लेकिन वास्तव में भक्तों, एक दिन ऐसा आता है कि हमारी संपत्ति, हमारा ऐश्वर्य हमारा कोई साथ नहीं दे सकता। तो यहाँ पर हाथी की शक्ति उसका साथ नहीं दे रही है। और करेणो, जब उसने देखा, करेणो मतलब उनकी पत्नियों ने, जब उनकी पत्नियों ने देखा विकृष्यमाणम तरसा बली ऐसा कि बहुत ही भयानक, बहुत ही बलवान घड़ियाल ने उसे पकड़ लिया है, तो वो बेचारी क्या करती है? जब हाथी जो है वो ही नहीं छुड़ा सकता है तो हाथनियों का तो बल कम, और वैसे भी गजेंद्र जब खुद नहीं कर सक रहा था कुछ भी, तो उसकी पत्नियां विचुक कृशुर वो बहुत ज्यादा दीन अवस्था में चिंगाड़ने लगी, वो रोने लगी, क्योंकि अब वो देख रही थी कि हमारा पति बहुत ज्यादा दुख में है। तो वो विचुक्षु वो बहुत ज्यादा रोने लगी दीन दया, क्योंकि उनको तो इतना पता ही नहीं था कि किस तरह से युद्ध किया जाता है, हमेशा उसी के आश्रम में होती थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ? अपरिगजा, दूसरे जो हाथी थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक तरकीब सोची कि अब ये हाथी खुद से बाहर नहीं आ सक रहा पानी से, तो उन्होंने क्या किया? पार्श्वी ग्रहस्ता रही तुम न चाशकम। पार्श्वी ग्रह यानी उन्होंने क्या किया, पार्श्वी कहते हैं जैसे सूंड में सूंड मिलाकर खींचने, एक चेन की तरह उन्होंने चेन बनाई, एक सूंड से पकड़ा दूसरे सूंड से, जैसे हाथ पकड़ के कैसे हम लोग खींचते हैं, ऐसे चेन की तरह एक दूसरे को पकड़ा के कभी कहीं कहीं दो दो हाथियों ने, तीन तीन हाथियों ने ऐसे जोर से पकड़ा। और क्या तार रही तुम कि अब क्या करते, ऐसे करके हम इसको, हम सब हाथी एक साइड पर जब जोड़ लगाएंगे तो वो तो घड़ियाल है, वो तो एक ही होगा ना, हम सब बहुत सारे होंगे तो हम सब इसको खींच कर अपने पास बुला लेंगे। सारे हाथी मिलकर उस हाथी को खींचने लगे, लेकिन न च अशकन, लेकिन फिर भी वो समर्थ ना हो सके। वास्तव में गजेंद्र घड़ियाल से बहुत ज्यादा शक्तिमान था, परंतु जब ईश्वर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। साधारण से साधारण जीव प्राणी को यदि ईश्वर चाहे, यदि भगवान चाहे, तो एक साधारण जीव में भी इतनी शक्ति आ सकती है कि वो संसार की सबसे बड़ी मुसीबत का भी सामना कर सकता है। तो एक गजेंद्र ही नहीं, सारे के सारे झुंड के झुंड, हजारों हाथी सब थक गए, हार गए, पत्नियां बिचारी वहां पर चिंगाड़ने लगी, रोने लगी। इस प्रकार गजेंद्र और ग्राहा का युद्ध चलने लगा, बहुत ही भयानक युद्ध शुरू हो गया। दोनों विशाल थे, गजेंद्र भी बहुत ज्यादा विशाल बलवान था और जो ग्राहा था वो भी बहुत ज्यादा बलवान था। तो ये युद्ध बहुत ही आश्चर्यचकित था, ना केवल उस वन के पशु ही उसे देख रहे थे परंतु देवता लोग भी विमान में चढ़कर उस युद्ध का दृश्य देख रहे थे कि कैसे ये दोनों विशाल प्राणी आपस में लड़ रहे हैं और कितना समय, समा सहस्त्रम, अभी हम पढ़ रहे हैं हजार वर्ष तक। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं
नियुध्यतो रेवमिभेन्द्रनक्रयोर् विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मथ समासहस्रं व्यगमन् महीपते स प्राणयोश्चित्रममं सतामर्हा नियुध्यतोरेवमिभेन्द्रनक्रयोर् विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मथ समा सहस्रं व्यगमन्महीपते स प्राणयोश्चित्रममं सतामरा।
सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं नियुध्यतो कि ये युद्ध बहुत समय तक भयानक युद्ध चलने लगा। नियुद्ध तो लड़ते हुए एवं इस प्रकार किस प्रकार कौन कौन लड़े थे? अभेंद्र और नक्र। अभेंद्र कहते हैं हाथी को और नक्र कहते हैं घड़ियाल को। ये हाथी और घड़ियाल बहुत ही खतरनाक युद्ध कर रहे थे।
विकर्षतोरन्तरतो बहिर्
विकर्ष खींच रहे थे एक दूसरे को। कभी कभी हाथी घड़ियाल को खींच कर बाहर निकाल आता था, मतलब तकरीबन आ जाता बाहर, और फिर उसी समय वो जो घड़ियाल है वो ऐसा झटका देता कि वो हाथी केवल वो एक हाथी नहीं सारे के सारे हाथी जो हैं वो उधर आके पानी के तरफ आने लगे। तो ये खींचतानी चल रही थी कैसे अंतरतो बहिर्मथा, बाहर और अंदर आ रहे थे, एक दूसरे को ला रहे थे। कितने समय तक? समा सहस्त्रम, समा मतलब वर्ष और सहस्त्रम मतलब 1000 वर्ष तक। 1000 वर्ष तक ना तो घड़ियाल ने कुछ खाया और ना ही हाथी ने। 1000 वर्ष तक ना तो घड़ियाल सोया और ना ही गजेंद्र। 1000 वर्ष तक दोनों आपस में लड़ते रहे। और ये जो इतना विकट समय था, व्यागमन महीपते, वो ये बोल रहे हैं कि हे राजन 1000 वर्ष इस विकट स्थिति में युद्ध करते हुए बीत गया। सप्राणयो दोनों जीवित रहे। कितने आश्चर्य की बात है कि 1000 वर्ष तक बगैर खाए पिए, बगैर सोए, बगैर विश्राम किए दोनों जीवित रहे। हाथी भी और मगरमच्छ भी जी रहे थे। तो ये कितना आश्चर्य की बात है। सप्राणयो चित्रम, चित्रम मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात है, आश्चर्यजनक है। तो अमसत मतलब उन्होंने विचार किया। किसने विचार किया कि बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात है? अमरा मतलब जो कभी मरते नहीं, मतलब अमर होते हैं। वैसे देवता भी एक समय होता है ऐसा कि देवता भी क्षय हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्योंकि अमृत पिया होता है और वो बहुत समय तक जीते हैं इसलिए उन्हें कहते हैं देवता अमर है। तो अमर नाम है उनका जो अमृत पीते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो देवता थे वो भी आकाश में अपने अपने विमान पर खड़े होकर इस युद्ध का दर्शन कर रहे थे कि ये कैसे प्राणी हैं, 1000 वर्ष तक युद्ध कर रहे हैं और दोनों जीवित हैं। ये भगवान की इच्छा है, भगवान उनको मारना नहीं चाहते थे, भगवान उनका उद्धार करना चाहते थे। तो भगवान की कृपा से अनुवाद देखिए श्लोक नंबर 28 का। तत्पश्चात गजेंद्र को उस विकट स्थिति में देखकर उसकी पत्नियां अत्यधिक दुखी हुईं और चिंघाड़ने लगी। दूसरे हाथियों ने गजेंद्र की सहायता करनी चाहिए किंतु घड़ियाल की विपुल शक्ति के कारण वे उसे पीछे से पकड़कर उसको नहीं बचा सके। हे राजन इस तरह हाथी तथा घड़ियाल जल के बाहर तथा जल के भीतर एक दूसरे को घसीट घसीट कर 1000 वर्ष तक लड़ने लगे। इस लड़ाई को देखकर देवता पर अत्यंत ही चकित थे। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ततो गजेन्द्रस्य मनो बलौजसा कालीन दीर्घेण महान भूत्व्यया विकृष्यमाणस्य जले वसीदतो
विपर्ययो भूत् सकलं जलौकस। ततो गजेन्द्रस्य मनो बलौजसाम् कालेन दीर्घेण महान् भूद्व्यया विकृष्यमाणस्य जले वसीदतो विपर्ययो भूत् सकलं जलौकस।
ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौजसा, ततो मतलब उसके पश्चात, 1000 साल तो इसे लड़ते रहते बीत गया, उसके पश्चात क्या हुआ, गजेन्द्रस्य जो हाथियों के राजा थे, जो गजेन्द्र थे, उसका मनोबलौजसा, उसका उत्साह बल, उसका शारीरिक, उसका मन का बल, उत्साह, उसका उसकी शारीरिक शक्ति, ओजसाम तथा इंद्रियों का बल, सब कालीन, बहुत ज्यादा समय बीत गया था ना लड़ते लड़ते, इसलिए कालीन दीर्घेण, बहुत समय तक लड़ते लड़ते उसका मनोबल, उसकी शक्ति, उसकी इंद्रियों का बल, वो सब क्षीण हो गया था। महान अभूत मतलब खत्म हो गई थी, अव्यय शुक क्यों घट गई थी, विकृष्यमाणस्य जले वसीदतो, क्योंकि घड़ियाल जो है वो बार बार उसको जल के अंदर ही खींच लेता था, बाहर नहीं जाने देता था और अंदर खींचता था। जले जले अवसीदतो, अब जल के अंदर क्या होता है, जो प्राणी जल में रहते हैं वो प्राणी जल के अंदर बलवान होते हैं, और जो प्राणी सूखी जगह पर रहते हैं थल में, वो वहां पर ही ज्यादा उनका बल जो है वो बढ़ रहा होता है। ये गजेंद्र इतना बलवान था कि इस एक ग्रह तो क्या, इस ग्रह के जैसे सैकड़ों ग्रहों को अपने पैर के नीचे कुचल सकता था, परंतु स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम, यदि ये पृथ्वी पर होते ना तो अवश्य ये गजेंद्र जो है वो ग्रह को कुचल कर उसी समय खत्म कर देता, परंतु गजेंद्र अब क्योंकि हाथी पानी का जानवर नहीं है, पृथ्वी का जानवर है, तो जितनी देर तक अभी क्योंकि 1000 साल तक वो पानी में बार बार उसको लेके जाता था, तो पानी में रहने के कारण उसकी मानसिक, उसकी शारीरिक तथा उसकी इंद्रिय शक्ति जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। अब वो नहीं कर सकता था युद्ध, अब बहुत ज्यादा मतलब बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। विपरीत थी ना, क्योंकि वो स्थिति उसके अनुसार नहीं थी, तो उसका बल तो दिन ब दिन कम हो रहा था, लेकिन घड़ियाल का जो, क्योंकि वो पानी का जानवर है तो पानी के अंदर था, तो उसका बल दिन ब दिन बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि जलावकसा, जलावकसा मतलब उसका घर है। अब जो ऐसे कहते हैं अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है ना, अब वो उसका घर है, ग्राह का घर क्या है, जल है, जल में वो आनंद से जी रहा था, जल में, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं थी, वो अपने घर में था। लेकिन हाथी क्योंकि पृथ्वी पर रहता है तो एक एक थोड़ी थोड़ी देर में क्या हो रहा था, उसका मनोबल अब बिल्कुल खत्म हो गया था, इसलिए वो अब और ज्यादा युद्ध नहीं कर सकता था। अनुवाद, तत्पश्चात जल के भीतर खींचे जाने तथा दीर्घ काल तक लड़ते रहने के कारण हाथी की मानसिक, शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति घटने लगी। इसके विपरीत जल पशु होने के कारण घड़ियाल का उत्साह, उसकी शारीरिक शक्ति तथा इंद्रिय शक्ति बढ़ती रही। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय हो। हाथी तथा घड़ियाल की लड़ाई में अंतर यह था कि हाथी अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी पराय स्थान में अर्थात जल में था। 1000 वर्ष की लड़ाई के दौरान उसे कोई भोजन नहीं मिल पाया, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी। उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने से मन भी कमजोर पड़ गया और उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ गईं। किंतु घड़ियाल तो जल का प्राणी है, जो ठहरा, उसे किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई, उसे भोजन प्राप्त होता रहा, जिससे उसे मानसिक शक्ति तथा इंद्रिय प्रोत्साहन मिल रहा था। इस प्रकार जहां हाथी का बल घटता गया, वहां घड़ियाल अधिकाधिक
बलशाली बनता गया। अब हम इससे यह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि माया से लड़ाई लड़ने में हम ऐसी स्थिति में ना पड़े जिससे कि हमारा बल, उत्साह तथा इंद्रियां शक्ति पूर्वक लड़ने में असमर्थ हो जाए। हमारे कृष्ण भावना आंदोलन के समूचे हमारे कृष्ण भावना आंदोलन ने सचमुच माया के विरुद्ध युद्ध ठान लिया है, जिसमें सारे जीव सभ्यता की झूठी मानसिकता लेकर सड़ रहे थे। इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के सिपाहियों में सदा शारीरिक शक्ति, उत्साह तथा इंद्रिय शक्ति रहनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए उन्हें अपने को सामान्य दशा में रखना चाहिए। सामान्य दशा हर एक के लिए एक सी ही नहीं होती है, अतएव वर्ण आश्रम विभाग बनाए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ तथा संन्यास। विशेषतया इस कलयुग में संन्यास लेने की सलाह नहीं दी जाती। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक श्लोक आता है, अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम फलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्षते। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि इस कलयुग में संन्यास आश्रम इसलिए वर्जित है क्योंकि लोग बलवान नहीं हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर आदर प्रस्तुत किया है, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य तक ने श्री चैतन्य महाप्रभु को सतर्क रहने की सलाह दी थी क्योंकि उन्होंने कम उम्र में संन्यास ले लिया था। हम प्रचार करने के लिए तरुण बालकों को संन्यास प्रदान करते हैं, किंतु ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि वे संन्यास ग्रहण करने के योग्य नहीं हैं। इसमें कोई हानि नहीं है। यदि कोई यह सोचे कि वह संन्यास के योग्य नहीं है, किंतु यदि वे काम भोग से सदैव विचलित होते हों, तो उन्हें ऐसे आश्रम में जाना चाहिए जिसमें काम भोग की छूट हो, अर्थात वे ग्रस्त आश्रम में जाएं। यदि कोई एक स्थान में अशक्त जान पड़े तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि वह घड़ियाल रूपी माया से लड़ना बंद कर दे। हमें कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जैसा कि गजेंद्र ने किया। उसी के साथ वह ग्रस्त भी बना रह सकता है। यदि वह काम भोग में लिप्त रहने से संतुष्ट है, लड़ाई बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अतिव श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनो वांग मनो भी, अर्थात कोई अपने अनुकूल किसी भी आश्रम में रह सकता है। संन्यास ग्रहण करना अनिवार्य नहीं है। यदि इसका मन काम भोग से सलेमान रहता है तो वह ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कर सकता है, लेकिन उसे लड़ाई जारी रखनी चाहिए। जो दिव्य पद को प्राप्त नहीं है, उसके लिए कृत्रिम रूप से संन्यास ग्रहण करना कोई श्रेय की बात नहीं है। यदि संन्यास उपयुक्त नहीं है तो वह ग्रस्त आश्रम में प्रविष्ट होकर माया के विरुद्ध बलपूर्वक लड़ सकता है, लेकिन उसे लड़ाई बंद करके भागना नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि यहाँ से हम देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम के कारण, यानी गृह में आसक्त होने के कारण ये जो गजेंद्र है वो फंस गया था, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम संन्यास ग्रहण कर लें, क्योंकि हर एक जीव की अलग अलग स्थिति होती है। तो संन्यास आश्रम वैसे भी कलयुग में निषेध है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? गृहस्थ में रहकर भी कैसे लड़ाई करनी चाहिए? देखो, अनुकूल स्थिति की तलाश करनी चाहिए। यहाँ पर क्या था, स्थिति प्रतिकूल थी। स्थिति क्या थी? गजेंद्र पृथ्वी का प्राणी था और लड़ रहा था जल के अंदर। उसी प्रकार यदि हम हम वास्तव में भगवान के अंश हैं, वास्तव में भगवान के दिव्य धाम के हम अंश हैं, दिव्य धाम हमारे रहने की जगह है और हम इस संसार में माया के अंदर रहते हैं। जब माया के अंदर आ जाते हैं तो हमारे लिए विपरीत परिस्थिति हो जाती है। इसलिए इस माया वाले संसार में, इस प्रकृति में आने के बावजूद भी हमें उस स्थान की खोज करनी चाहिए जो हमारे लिए अनुकूल हो, अर्थात जिसमें रहकर हम इस माया के आक्रमण से बच सकें। और वो क्या है? साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धियों। तो हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग में माया जो है वो ज्यादा हमें अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। तो क्या होगा? ये अनुकूल परिस्थिति होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अकेले बैठकर ही भक्ति करेंगे, बस श्रवण करना छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि भाई हम माला तो कर रहे हैं ना, बस माला करेंगे। फिर क्या होगा? माला करते करते आपके ऊपर आक्रमण कर देगा वो घड़ियाल। केवल काफी नहीं है ये, हमें श्रवण भी करना है, हमें भक्तों का संग भी करना है, विग्रह सेवा भी करनी, मंदिर में भी आना है। ऐसे अगर अनुकूल परिस्थिति होगी ना तो माया को आक्रमण करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना चाहिए कि हम किस प्रकार से उस स्थान में रहें जहां पर माया हमें आक्रमण ना कर सके। तो यहाँ पर बता रहे कि गजेंद्र कितना बलवान था, अगर पृथ्वी पर होता तो फिर घड़ियाल तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता था, परंतु क्योंकि वो जल के अंदर था इसलिए वो कितना ज्यादा दुखी हो गया था। उसकी शक्ति, उसकी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, इंद्रिय शक्ति सब खत्म हो गई थी। उसी प्रकार यदि हम माया के चुंगल में रहेंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं करेंगे, भगवान के दर्शन करने नहीं आएंगे, तो फिर क्या होगा? माया काल रूपी जो है, काल रूपी मगरमच्छ हमें भी पकड़ लेगा और हम क्योंकि वैसे भी माया में हैं तो उस काल को अनुकूल परिस्थिति मिलेगी और हमें प्रतिकूल मिलेगी और हमारी भी शक्ति, हमारा मनोबल, हमारी इंद्रिय शक्ति सब समाप्त हो जाएंगे और हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमारा ये मनुष्य जन्म जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। आगे देखते हैं भगवान किस प्रकार से गजेंद्र की सहायता करते हैं। हरि बोल, साथ रहिएगा।